रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। संजय जब से हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का संदेश लेकर आए तब से हस्तिनापुर का वातावरण ही बदल गया। कारण कि युधिष्ठिर के संदेश में न कायरता है, न थोथी धमकियां हैं, न कोई अनौचित्य है। बड़ी सात्विक सार सार बात थी और सब कुरुवंशियों के दिमाग में ये बात बैठ रही थी कि पांडवों की बात को स्वीकार कर लिया जाए। एक दुर्योधन का अहंकार और उसकी कुसंगति सच्ची बात को स्वीकार नहीं कर रही थी। धृतराष्ट्र भी पुत्र के मुंह में अंधे तो थे, परंतु वे भी भगवान कृष्ण की शरण में तो आ ही गए। धृतराष्ट्र ने कल यहां तक कह दिया था कि संजय, जो लोग अपने नेत्रों से भगवान के तेजोमय दिव्य विग्रह का दर्शन करते हैं, उन नेत्रवान पुरुषों के भाग्य की मुझे भी लालसा होती है। मैं भगवान के दर्शन करूं, मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत कीर्ति तथा ब्रह्मादि से भी श्रेष्ठ पुराण पुरुष श्री कृष्ण की शरण लेता हूं, जिन्होंने तीनों लोकों की रचना की, जो देवता असुर नाग राक्षस सभी की उत्पत्ति करने वाले और राजाओं और विद्वानों में प्रधान है, उन इंद्र के अनुज श्री कृष्ण की मैं शरण स्वीकार करता हूं। भगवान की महिमा से ये असर पड़ा किस पर? धृतराष्ट्र पर। वैशंपायन जी कहते हैं, अब हम आपको पांडवों के पक्ष में ले चलते हैं। बड़े ध्यान से आगे की कथा को सुनो। इधर संजय के चले जाने पर राजा युधिष्ठिर ने यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्ण से कहा, हे मित्र वत्सल श्री कृष्ण, मुझे आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं दिखाई देता है जो हमें विपत्ति से पार करे। हम तो आपके भरोसे एकदम निर्भय हुए हुए हैं और आपके आश्रय से ही हम दुर्योधन से अपना भाग मांगना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, मैं आपसे कब अलग हूं? मैं तो आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आप जो कुछ कहना चाहें वो कहिए, आप जो जो आज्ञा देंगे वह सब मैं पूर्ण करूंगा। बोलिए, आपकी क्या इच्छा है? युधिष्ठिर ने कहा, कृष्ण मैं आपको आज्ञा दूं, आप ये कैसे बोलते हैं? यही आपका प्रेम है और इसी स्नेह के कारण से हम लोग आपके आधार पर बैठे हुए हैं। हे कृष्ण, राजा धृतराष्ट्र और उनके पुत्र जो कुछ करना चाहते हैं वो तो आपने संजय के द्वारा सुन लिया। संजय ने हमसे जो कुछ कहा है वो सत्य सत्य कहा है और यही उन्हीं लोगों का मत है, क्योंकि दूत तो स्वामी के कथनानुसार ही कहा करता है ना। यदि वह कभी दूसरी बात कहता है तो प्राण दंड का अधिकारी हो जाता है। राजा धृतराष्ट्र को राज्य का बड़ा लोभ है, इसी से वे हमारे और कौरवों के प्रति समान भाव न रखकर हमें राज्य दिए बिना ही संधि करना चाहते हैं। संजय से आपने सुना ना कि आप देशाटन में भी जाकर धर्म का पालन कर सकते हैं। इसका अर्थ यही है, हम अपना राज्य न लें और संधि कर लें। हम तो यही समझकर कि महाराज धृतराष्ट्र अपने वचन का पालन करेंगे, उनकी आज्ञा से 12 वर्ष वन में रहे और 1 वर्ष अज्ञातवास किया, किंतु इन्होंने तो बड़ा धोखा किया। इनके मन में बड़ा लोभ पैदा हो गया। हे कृष्ण, ये धर्म का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं और अपने मूर्ख पुत्र के मुंह पाश में फंसे होने के कारण उसी की आज्ञा बजाना चाहते हैं। हमारे साथ तो इनका बिल्कुल बनावटी बर्ताव हो रहा है। हे जनार्दन, सोचिए इससे बढ़कर दुख की और क्या बात होगी कि मैं इन 12 वर्षों में न तो मां की सेवा कर सका, न उनका दर्शन कर सका, न अपने सगे संबंधियों का भरण पोषण कर सका। यद्यपि वो हमारी सब धार्मिक परिस्थितियों को जानते हैं, हमारी तरफ केशीराज, चेदीराज, पंचाल नरेश, मत्स्यराज और आप सहायक हैं, तो भी मैं 5 गांव ही तो मांग रहा हूं। मैंने तो यही कहा है कि अविस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारणावत और 5वां जो भी चाहे ऐसा गांव या नगर दे दें जिससे हम 5ों भाई मिलकर रह सकें और हमारे कारण भरतवंश का नाश हो। परंतु दुष्ट दुर्योधन इतना भी करने के लिए तैयार नहीं, वह सब पर अपना ही दखल रखना चाहता है। लोभ से बुद्धि मारी जाती है, बुद्धि नष्ट होने से लज्जा नहीं रहती, लाज के साथ धर्म चला जाता है और धर्म के साथ लक्ष्मी भी विदा हो जाती है। लक्ष्मीहीन पुरुष से स्वजन, सुहृद और ब्राह्मण लोग दूर रहते हैं, जैसे पुष्प फलहीन वृक्ष को छोड़कर पक्षी उड़ जाते हैं। निर्जन अवस्था बड़ी ही दुखमय होती है, कोई कोई तो इस अवस्था में पहुंचकर मौत को ही मांगने लग जाते हैं, कोई किसी दूसरे गांव या वन में जाकर बसते हैं और कोई मौत के मुख में चले जाते हैं। जो लोग जन्म से ही निर्धन है उन्हें उतना कष्ट नहीं जान पड़ता कि लक्ष्मी पाकर सुख में पले हुए लोगों को धन का नाश होने पर होता है। माधव, इस विषय में हमारा पहला विचार तो यही है, हम और कौरव लोग आपस में संधि करके शांतिपूर्वक समान रूप से उस राज लक्ष्मी को भोगें, और यदि ऐसा न हुआ तो अंत में यही करना होगा कि कौरवों को मारकर ये सारा राज्य हम अपने अधीन कर लें। बताओ कृष्ण, हम कहां कमजोर हैं? युद्ध में तो कलह ही होता है, प्राण भी संकटग्रस्त रहते हैं। मैं तो नीति का आश्रय लेकर युद्ध कर रहा हूं, क्योंकि मैं न तो राज्य छोड़ना चाहता हूं और न कुल का नाश ही चाहता हूं, यह मेरी इच्छा है। यो तो हम साम, दान, दंड, भेद सभी उपायों से अपना काम कर लेना चाहते हैं, किंतु यदि थोड़ी नम्रता दिखाने से संधि हो जाए तो वही सबसे बढ़कर बात होगी। यदि संधि नहीं हुई तो युद्ध होगा, फिर पराक्रम न करना अनुचित हो जाएगा। जब शांति से काम नहीं चलता है तो स्वतः ही कटुता आती है। पंडितों ने इसकी उपमा कुत्ते के कलह से दी है। अरे राम राम, कुत्ते पहले पूंछ ही लाते हैं, उसके बाद एक दूसरे का दोष देखते हैं, फिर गुर्राना आरंभ करते हैं, उसके बाद दांत दिखाना, फिर भूखना प्रारंभ करते हैं, और फिर आपस में एक दूसरे को खाने के लिए दौड़ते हैं। यही दशा सब लोगों की हो रही है। उनमें जो बलवान होता है वो दूसरे का मांस खा जाता है। मनुष्यों में भी इससे कोई विशेषता तो नहीं लग रही है। श्री कृष्ण, अब मैं ये जानना चाहता हूं, ऐसा समय उपस्थित होने पर आप क्या करना उचित समझते हैं? ऐसा कौन उपाय है जिससे हम अर्थ और धर्म से वंचित न होवे? हे पुरुषोत्तम, इस संकट के समय हम आपको छोड़कर किससे सलाह लें? भला आपके समान हमारा कौन प्रिय और हितेशी तथा समस्त कर्मों के परिणाम को जानने वाला संबंधी होगा? वैशंपायन कहते हैं, हे जन्मेजय, महाराज युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अपनी चिर परिचित मुस्कुराहट के साथ भगवान ने कहा, युधिष्ठिर, मैं दोनों पक्षों के हित के लिए कौरवों की सभा में जाना चाहूंगा, और वहां यदि आपके लाभ में किसी प्रकार की बाधा पहुंचाते हुए संधि करा सकूंगा तो मैं यही समझूंगा कि मुझसे कोई बड़ा भारी पुण्य कार्य बन गया। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, ये आप क्या कह रहे हैं? आप कौरवों के पास जाए, इसमें मेरी सम्मति तो नहीं है। कहां कौरव, कहां आप? इतने निकृष्ट स्वभाव वाले लोभी लालची लोगों के बीच में आपका जाना मुझे उचित मालूम नहीं देता है। इसमें सबसे बड़ा कारण यह है, आप उन्हें बहुत युक्ति युक्त बात कहेंगे फिर भी दुर्योधन उसे मानेगा नहीं। इस समय वहां दुर्योधन के वशवर्ती सब राजा लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इसलिए उन लोगों के बीच में आपका जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। माधव, आपको कष्ट होने पर तो हमें धन की इच्छा नहीं, सुख की इच्छा नहीं, देवत्व और समस्त देवताओं पर आधिपत्य करने की कोई इच्छा नहीं। आप वहां जाएं, इसके तो बदले हम वनवास में भटकते रहे, यही अच्छा लगता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, दुर्योधन कैसा पापी है ये मैं जानता हूं, किंतु यदि हम अपनी ओर से सब बात स्पष्ट कह देंगे तो संसार में कोई भी राजा हमें दोषी नहीं कह सकेगा। रही मेरे लिए भय की बात, मेरा वो कुछ बिगाड़ देगा, संभव ही नहीं है। जिस तरह सिंह के सामने दूसरे जंगली जानवर ठहर नहीं सकते, उसी प्रकार मैं यदि क्रोध करूं तो सारे संसार के राजा मिलकर मेरा मुकाबला नहीं कर सकते राजन। अतः मेरा वहां जाना निरर्थक तो किसी भी तरह नहीं होगा। यदि संभवतः काम बन गया तो अपने लोग निंदा से बच जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, यदि आपको ऐसा उचित जान पड़ता है तो आप प्रसन्नता से कौरवों के पास जाइए। निंदा से बचने के लिए, कोई लोग हमें दोषी न ठहराए, इसलिए यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके कार्य में किसी प्रकार रुकावट नहीं डालूंगा। मैं आपको अपने कार्य में सफल होकर यहां सकुशल लौटा हुआ देखूंगा। आप वहां पधारकर कौरवों को शांत करें, जिससे कि हम आपस में मिलकर शांतिपूर्वक रह सकें। आप हमें जानते हैं, कौरवों को भी पहचानते हैं और हम दोनों का हित किस में, ये बात भी आपसे छिपा नहीं है। और इसके सिवा बातचीत करने में आपके समान कौन कुशल हो सकता है, अतः जिस जिस में हमारा हित हो सब बातें आप दुर्योधन से कह देना। श्री कृष्ण बोले, हे महाराज, मैंने संजय और आप दोनों की बातें सुनी, मुझे कौरव और आप दोनों का अभिप्राय मालूम है। आपकी बुद्धि धर्म का आश्रय लिए हुए है और उनकी शत्रुता में डूबी हुई है। आप तो उसी को अच्छा समझेंगे जो बिना युद्ध के मिल जाएगा, परंतु महाराज ये क्षत्रिय का नैष्ठिक कर्म नहीं है। सभी आश्रम वालों का कहना है कि क्षत्रिय को भीख नहीं मांगनी चाहिए, उसके लिए तो विधाता ने यही सनातन धर्म बताया है कि या तो संसार में विजय प्राप्त करे या युद्ध भूमि में मर जाए, यही क्षत्रिय का स्वधर्म है। दीनता उसके लिए प्रशंसा की चीज नहीं है महाराज। दीनता का आश्रय लेकर क्षत्रियों की जीविका नहीं चल सकती, अतः आप भी पराक्रम पूर्वक शत्रुओं का दमन कीजिए। धृतराष्ट्र के पुत्र बड़े लोभी हैं, इधर बहुत दिनों से साथ रहकर उन्होंने स्नेह का बर्ताव करके अनेकों राजाओं को अपना मित्र बना लिया है, इससे उनकी शक्ति भी बढ़ गई है। इसलिए वे आपसे संधि कर ले ऐसी तो कोई सूरत दिखाई नहीं देती। इसके सिवा भीष्म और कृपाचार्य आदि के कारण वे अपने को बलवान भी समझते हैं, अतः जब तक आप उनके साथ नरमी का बर्ताव करेंगे तब तक वे आपके राज्य को हड़पने का प्रयत्न करेंगे। राजन, ऐसे कुटिल स्वभाव और आचरण वालों के साथ आप मेल मिलाप करने का प्रयत्न न करें, आप ही के नहीं वे तो सभी लोगों के द्वारा वध्य हैं। जिस समय जुए का खेल हुआ था और पापी दुशासन असहाय के समान रोती हुई द्रौपदी को उसके केश पकड़कर राजसभा में खींचा लाया था, उस समय दुर्योधन ने भीष्म और द्रोण के सामने भी उसे बार बार गऊ कहकर पुकारा था। उस अवसर पर अपने महापराक्रमी भाइयों को आपने रोक दिया था, इसी से धर्मपाश में बंधे होने के कारण इन्होंने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया। किंतु यदि मुझसे पूछा जाए, उस समय आपका ये काम उचित नहीं था। उस दुष्ट और अधम पुरुष को वहीं सबके सामने चीर डालना था। आप किसी प्रकार का विचार न करें, आप किसी प्रकार का विचार न कर उसे मार डालते, बड़ा अच्छा होता, ताकि लोग ऐसे पाप के लिए आगे कदम नहीं उठाते। परंतु जो हो गया उसके लिए क्या कहा जाए। युधिष्ठिर महाराज ने नीचा सिर कर लिया। कृष्ण भगवान ने कहा, अब आप पीछे की बात छोड़ दीजिए। हां, आप जो पितृतुल्य धृतराष्ट्र और पितामह भीष्म के प्रति नम्रता का भाव दिखा रहे हैं, ये तो आपके योग्य ही है। अब मैं कौरवों की सभा में जाकर सब राजाओं के सामने आपके सर्वांगीण गुणों का वर्णन करूंगा और दुर्योधन के दोष बताऊंगा। मैं वे ही बातें कहूंगा जो धर्म और अर्थ के अनुकूल होंगी। शांति के लिए प्रार्थना करने पर भी आपकी निंदा नहीं होगी। सब राजा धृतराष्ट्र और कौरवों की ही निंदा करेंगे। मैं कौरवों के पास जाकर इस प्रकार संधि के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे आपके स्वार्थ साधन में कोई त्रुटि न आए और उनकी गतिविधि भी मालूम कर लूंगा। मुझे तो पूरा पूरा यही भान होता है कि शत्रुओं के साथ हमारा संग्राम होगा, क्योंकि मुझे ऐसे ही शकुन दिखाई दे रहे हैं। अतः आप सभी वीरगण एक निश्चय करके शस्त्र यंत्र कवच रथ हाथी और घोड़े तैयार रखें। इसके सिवा और भी युद्ध की सामग्री है, वो भी आप जुटा लें। ये निश्चय माने कि जब तक दुर्योधन जीवित है तब तक वो किसी भी प्रकार आपको कुछ देगा नहीं। दुर्योधन की दृष्टि राज्य पर है और मेरी दृष्टि द्रौपदी के साथ किए हुए अन्याय पर है। भीमसेन ने कहा, हे मधुसूदन, आप कौरवों से ऐसी बात कहें जिनसे वे संधि को तैयार हो जाएं, उन्हें युद्ध की बात सुनाकर भयभीत न करें। दुर्योधन बड़ा ही असहनशील, क्रोधी, अदूरदर्शी, निष्ठुर, दूसरों की निंदा करने वाला, हिंसा प्रिय है। वह मर जाएगा किंतु अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार शरद ऋतु के बाद ग्रीष्म आने पर वन दावाग्नि से जल जाते हैं, वैसे ही दुर्योधन के क्रोध से एक दिन सभी भरतवंशी भस्म हो जाएंगे। केशव, कली, मुदावर्त, जन्मेजय, बहुल, बसु, अजबिंधु, रसव, रुषार्धिक, आरकज, धौतमलक, हयग्रीव, वरयु, बाहु, पुरुरवा, सहज, वृषध्वज, धारण, विगाहन और शम, ये 18 राजा ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने ही सजाती सुरृद और बंधु बांधवों का संहार कर डाला था। इस समय हम कुरुवंशियों के संहार का समय है। इसी से कालगति से कुलांगार पापात्मा दुर्योधन उत्पन्न हुआ है। अतः आप जो कुछ कहें मधुर और कोमल वाणी में, धर्म और अर्थ से युक्त उनके हित की बात कहें। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि वह बात अधिकतर उसके मन के अनुकूल ही हो। हम सब तो दुर्योधन के नीचे रहकर बड़ी नम्रता पूर्वक उसका अनुसरण करने को भी तैयार हो गए थे। हमने उस समय अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की ओर देखा, उनकी आज्ञा का पालन किया था। हम अभी भी यही चाहते हैं कि हमारे कारण भरतवंश का नाश न हो। आप कौरवों की सभा में जाकर हमारे वृद्ध पितामह और अन्यान्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहे जिससे भाई भाइयों में मेल बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, आज तक भीमसेन के मुख से कभी किसी ने नम्रता की बात नहीं सुनी थी। अतः उनके ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बड़े जोर से हंस पड़े और फिर अपने स्थान से उठकर भीमसेन के कंधे पर जोर से हाथ रखते हुए भीमसेन को उत्तेजित करते हुए इस प्रकार कहने लगे, भीमसेन, तुमने उस भरी सभा में क्या प्रतिज्ञा की थी? मैं ये बात सच सच कहता हूं, आप सब लोग इस बात को कान खोलकर सुन लें। मैं कुंती पुत्र भीम संग्राम भूमि में अपनी गदा से दुर्योधन सहित सब भाइयों को मारकर ही दम लूंगा, किंतु अब आप ढीली ढीली बातें कर रहे हैं। कहां गया वो भीमसेन का तेज? कहां गई वो तुम्हारी गदा? ज्यों ज्यों युद्ध काल उपस्थित होता है तुम्हारा जैसा वीर उत्साहहीन होता है। यदि अभी तुम युद्ध से भय मानने लगे हो तो आगे युद्ध कैसे करोगे? यह तो बड़ी दुख की बात है। इस समय तो नपुंसकों के समान तुम्हें भी अपने में कोई पुरुषार्थ नहीं दिखाई दे रहा है। भीमसेन, हे भरतनंदन, तुम अपने कुल पर दृष्टि डालो, अपने जन्म और कर्म पर दृष्टि डालो। क्यों इतनी ढीली बात करते हो? व्यर्थ ही किसी प्रकार का विषाद मत करो। क्षत्रियों का कर्तव्य जो है उस पर डटे रहो। तुम्हारे चित्त में जो इस समय बंधुवध के कारण युद्ध से ग्लानि का भाव उत्पन्न हुआ है कि क्यों लड़ा जाए, आपस में मेल मिलाप हो तो अच्छा है, ये बात तुम्हारे योग्य नहीं है भीमसेन। क्योंकि क्षत्रिय जिसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त नहीं करता, उस चीज को वह गिड़गिड़ा के प्राप्त करना चाहता है। भीमसेन और गिड़गिड़ाहट कोई मेल नहीं है। भीमसेन ने जोश के साथ कहा, वासुदेव मैं कुछ और ही करना चाहता हूं और मैं ऊपर से और ही बात करता हूं, मेरी चाल को आप समझिए। मैंने जो कुछ कहा है वो उत्साहहीन होकर नहीं कहा, केवल बड़े भाई की प्रसन्नता के लिए कहा। बड़े भाई तो आपको भेजने के लिए तैयार हो गए, मैं तो आपको भेजना भी नहीं चाहता था, क्या जरूरत है अब आपको वहां संधि कराने की। लेकिन बड़े भाई बोलते हैं, मेरा बल और पुरुषार्थ अन्य पुरुषों के पराक्रम से कुछ भी क्षमता नहीं रखता है। अपने मुंह अपनी बड़ाई करना सत्पुरुषों की दृष्टि में अच्छी बात नहीं है, परंतु आपने मेरे पुरुषार्थ की निंदा की है, इसलिए मुझे अपने बल का वर्णन करना ही पड़ेगा। लोहे के मोटे डंडों के समान आप मेरे इन भुजदंडों को देखिए, इनके बीच में पड़कर कोई जीवित निकल जाए असंभव है। जिस पर मैं आक्रमण करूं उसकी रक्षा के लिए मैं इंद्र को भी ललकार सकता हूं। पांडवों पर अत्याचार करने को उद्यत इन समस्त युद्धोत्सुक क्षत्रियों को मैं पृथ्वी पर गिरा गिरा कर लात मार मार कर जमीन के अंदर उनको मिला दूंगा। मैंने जिस प्रकार राजाओं को जीत जीत कर अधीन किया है, मैं उस प्रकार से इन दुर्योधन के भाइयों को नहीं मारूंगा। उनके मारने के लिए मैंने अलग ही विधि सोच रखी है। यदि सारा संसार मुझ पर कुपित होकर टूट पड़े, मुझे किसी का भय नहीं है। मैंने जो शांति की बात कही वो केवल आप लोगों के बात में हां मिलाने के लिए कही है। दूसरे शब्दों में कि आपको कहीं ऐसा न लगे कि क्रूर स्वभाव वाला भीमसेन क्या कहेगा, इसलिए मैं चुपचाप रहा, मैंने शांति की बात कही। मैं दयावश इस प्रकार के कष्ट भी सह लेता हूं। कृष्ण ने कहा, भीमसेन मैंने भी तुम्हारा ये क्रोध का भाव जानने के लिए, तुम्हें डांटने के लिए जो बात कही वो प्रेम से भरी हुई कही है। अपनी बुद्धिमानी दिखाने या क्रोध के कारण मैंने ऐसा नहीं कहा है, मैं तुम्हारे प्रभाव को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए तुम्हारा तिरस्कार करने के लिए नहीं कहा, उत्साहित करने के लिए कहा। भीमसेन उत्साह रखो, अब कल मैं धृतराष्ट्र के पास जाकर आप लोगों के स्वार्थ की रक्षा करते हुए संधि का प्रयत्न करूंगा। भीमसेन ने कहा, क्यों, क्या आपको संधि की जरूरत पड़ गई? देखो भीमसेन, समय तो किसी को रखता नहीं है ना, समय आएगा न कृष्ण रहेगा न भीम रहेगा न दुर्योधन रहेगा न भीष्म रहेंगे, इतिहास तो रहेगा ना। इतिहास कहेगा कि पांडवों ने कृष्ण को संधि के लिए भेजकर कितनी शांति का काम किया था, उससे हमारा यश चिरस्थायी होगा। अरे भीमसेन, इस संसार में यश ही आदमी का शरीर है, यदि यश ही नहीं रहा तो फिर जीने का क्या लाभ होगा? अपने यश अपनी कीर्ति चिरस्थायी हो, इसके लिए मैं जा रहा हूं। यदि उन्होंने अभिमानवश मेरी बात न मानी, और मुझे मालूम है वो नहीं मानने वाला है, फिर तो युद्ध होगा ही। इस युद्ध का सारा भार तुम्हारे ऊपर रहेगा, अर्जुन इसकी धुरी धारण करेंगे और सब लोग तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। युद्ध हुआ तो मैं अर्जुन का सारथी बना रहूंगा, अर्जुन की भी ऐसी इच्छा है, इससे तुम यह न समझना कि मैं युद्ध करना नहीं चाहता। इसी से जब तुमने कायरता की बात की तो मैं तुम्हारे विचार पर संदेह करने चला गया, मैं ऐसी बातें सुनकर तुम्हारे तेज को उभारना चाहता था, तुम्हारे तेज को मैंने उभार दिया, अब मेरा मन प्रसन्न हो गया। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण जो कुछ कहना था वह तो युधिष्ठिर जी ने कह ही दिया, किंतु आपकी बातें सुनकर मुझे ऐसा जान पड़ता है कि धृतराष्ट्र के लोभ और मोह के कारण आप संधि होना सहज नहीं समझते हैं। यदि कोई काम ठीक रीति से किया जाता है तो वह सफल भी हो जाता है, इसलिए आप ऐसा करें जिससे शत्रुओं के साथ संधि हो जाए, अथवा आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। आपने जो सोच रखा है हम तो उसको शिरोधार्य करते हैं, अपने लिए मान्य मानते हैं, किंतु जो धर्मराज के पास लक्ष्मी देखकर उसे सहन नहीं कर सका और कपट द्यूत जैसे कुटिल उपाय से उनकी राज लक्ष्मी हर ली, उस दुष्टात्मा दुर्योधन क्या अपने पुत्र पौत्र और बांधवों सहित मृत्यु के मुख में भेजे जाने योग्य नहीं है? यदि वो भेजे जाने योग्य है तो इस संधि का क्या अर्थ होगा? उस पापी ने जिस प्रकार सभा के बीच में द्रौपदी को अपमानित करके क्लेश पहुंचाया था, जिसका वर्णन अभी आपने किया ही है, हम तो उसे सहन कर लिए, किंतु यह बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं बैठती कि दुर्योधन अब पांडवों के साथ अच्छा बर्ताव करेगा। ऊसर भूमि में बोए हुए बीज के अंकुरित होने की भी क्या आशा की जाती है? अतः आप जो उचित समझें और जिसमें पांडवों का हित हो वही काम आप प्रारंभ करें, हमें आगे जो कुछ करना हो वो आप बता दें। कृष्ण का, महाबाहु अर्जुन मैं कौरवों के पास संधि प्रस्ताव लेके जा रहा हूं, तुम्हें वो अनुचित मालूम देता हो तो कोई बात नहीं, आप लोगों के चित्त को दुखाकर मैं क्या काम करना चाहूंगा? देखो मेरा जाना उचित है, मैं वही काम करूंगा जिसमें कौरव और पांडवों का हित होगा, किंतु प्रारब्ध का बदलना मेरे बस की बात नहीं है। कौन बोलते हैं? भगवान। क्या बोलते हैं? कि किसी का प्रारब्ध मैं नहीं बदल सकता। दुरात्मा दुर्योधन तो धर्म और लोक दोनों को ही तिलांजलि देकर स्वेच्छाचारी हो गया, ऐसे कर्मों से उसे पश्चाताप भी नहीं हो रहा है, बल्कि उसके सलाहकार शकुनी कर्ण और दुशासन भी उसकी इस पापमयी कुमति को बढ़ावा दे रहे हैं, इसलिए आधा राज्य देकर उसे चैन नहीं मिलेगा। अर्जुन उसका तो परिवार सहित नाश होने पर ही शांति होगी, और अर्जुन तुम्हें तो दुर्योधन के मन और विचार का भी पता है ही, फिर अनजान की तरह तुम मुझसे क्यों शंका कर रहे हो? पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवता लोग पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं, इस दिव्य विधान को भी तुम जानते हो ना, फिर बताओ उनसे संधि कैसे हो सकती है? फिर भी मुझे सब प्रकार से धर्मराज जी की आज्ञा का पालन करना है। नकुल तुम्हारी क्या सम्मति है? हे माधव, धर्मराज ने आपसे कई प्रकार की बातें कही, वे सब आपने सुन ली, भीमसेन ने भी संधि के लिए कहकर फिर आपको अपना बाहुबल भी सुना दिया, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा वो भी आप सुन ही चुके, तथा अपना विचार भी कई बार सबके सामने रख दिए। सो हे पुरुषोत्तम, इन सब बातों को छोड़कर आप शत्रु का विचार जानकर जैसा करना उचित समझे वैसा कीजिए। हम देखते हैं कि वनवास और अज्ञातवास के समय हमारा विचार दूसरा था और अब दूसरा विचार हो गया। वन में रहते समय हमारा राज्य पाने में अनुराग नहीं था और अब अनुराग पैदा हो गया। अब कौरवों की सभा में जाकर पहले तो संधि की बात करें, पीछे युद्ध की धमकी दें और इस प्रकार बात करें जिससे मंद बुद्धि दुर्योधन को व्यथा न हो। भला विचारिए, ऐसा कौन पुरुष है जो संग्राम भूमि में महाराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, सहदेव, आप, बलराम जी, सात्यकी, विराट, उत्तर, द्रुपद, दृष्टद्युम्न, काशीराज, चेदीराज, धृष्टकेतु और मेरे सामने टिक सके। आपके कहने पर विदुर, भीष्म, द्रोण और वाल्मीक ये बात समझ सकेंगे कि कौरवों का हित किसमें है। दुर्योधन एक अभिमानी है तो क्या हुआ, भीष्म, द्रोण, विदुर तो सब जानने वाले हैं, आपकी बात का आदर करने वाले हैं। फिर वे राजा धृतराष्ट्र और सलाहकारों के सहित पापी दुर्योधन को भी समझा देंगे। भगवान मुस्कुराए, सहदेव तुम्हारी क्या इच्छा है? सहदेव ने कहा, महाराज युधिष्ठिर ने कही वो तो सनातन धर्म है, किंतु आप तो ऐसा प्रयत्न करें जिससे युद्ध होना चाहिए। यदि कौरव लोग बात करते करते संधि पर भी उतर जाए तो आप उनके साथ युद्ध होने का कोई रास्ता निकाल लीजिएगा, ये संधि हमारे लिए बहुत खतरनाक होगी। श्री कृष्ण, सभा में की हुई द्रौपदी की दुर्गति देखकर मुझे दुर्योधन पर जो क्रोध हुआ था वह उसके प्राण लिए बिना कैसे शांत हो सकता है। भगवान मुस्कुराए और जोर से पीठ पर थपथपी, शाबाश सहदेव। सात्यकी ने कहा, महाबाहो, महामती सहदेव सबसे छोटे लेकिन सबसे मोटी बात कही, इनका और मेरा कोप तो दुर्योधन का वध होने पर शांत होगा। वीरवर सहदेव ने जो बात कही वास्तव में यही सब योद्धाओं का मत है। सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां बैठे हुए सब योद्धा भयंकर सिंहनाद करने लगे। बड़े बड़े युद्धोत्सुक वीरों ने एक साथ कहा, ठीक है, सहदेव का मत सबसे अच्छा है, इस संधि में से युद्ध का ही रास्ता निकलना चाहिए। सबकी एक आवाज आई। सात्यकी को बड़ा हर्ष हुआ और सभी उनके मत का समर्थन करने लगे। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जनमेजय, अंदर से भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न थे। इधर महाराज युधिष्ठिर के धर्म और अर्थयुक्त वचन सुनकर तथा भीमसेन को शांत देखकर द्रुपद नंदिनी कृष्णा, सहदेव और सात्यकी की प्रशंसा करते हुए उन सब के बीच में रो रो कर कहने लगी, हे धर्मज्ञ मधुसूदन, दुर्योधन ने जिस प्रकार क्रूरता का आश्रय लेकर पांडवों को राजसुख से वंचित किया था वह तो आपको मालूम ही है, तथा संजय को राजा धृतराष्ट्र ने एकांत में अपना जो विचार सुनाया वो आप में किसी से छिपा नहीं है। इसलिए यदि दुर्योधन हमारा राज्य का भाग दिए बिना ही संधि करना चाहे तो आप उसे किसी प्रकार स्वीकार न करें। इन संजय वीरों के साथ पांडव लोग दुर्योधन की रणोन्मत्त सेना से अच्छी तरह से मुकाबला कर सकते हैं। साम या दान के द्वारा कौरवों से अपना प्रयोजन सिद्ध होने की कोई आशा नहीं है, इसलिए आप भी उनके प्रति कोई ढील ढाल न करें, क्योंकि जिसे अपनी जीविका को बचाने की इच्छा है उसे साम या दान से काबू में न आने वाले शत्रु के प्रति दंड का ही प्रयोग करना चाहिए। अतः अच्युत, आपको जो पांडव और संजय वीरों के साथ लेकर उन्हें शीघ्र ही बड़ा दंड देना चाहिए। ये बात मैंने अभी आपको सुनाई है, मेरे हृदय में अभी और कई बातें हैं। जनार्दन, शास्त्र का मत है कि अवध्य का वध करने में दोष है, किंतु वध्य का वध न करने में भी दोष है। जिस आदमी का वध करना चाहिए उसका वध नहीं करेंगे, ये भी एक दोष है, पाप है, अन्याय है। अतः आप भी पांडव, यादव, संजय वीरों के सहित ऐसा काम करें जिससे वह दोष आपको लग न सके। भला बताइए मेरे समान पृथ्वी पर कौन स्त्री है। मैं महाराज द्रुपद की वेदी से अग्नि से प्रकट हुई अयोनिजा पुत्री हूं। कोई मुझसे मेरे मां का नाम पूछे तो मैं क्या बताऊं। बिना मां की बेटी, बिना स्त्री पुत्र के अंश से पैदा हुई, धृष्टद्युम्न की बहन, आपकी प्रिय सखी, महात्मा पांडु की पुत्रवधु और पांच इंद्रों के समान तेजस्वी पांडुओं की पटरानी हूं। इतनी सम्मानिता होने पर भी मुझे भरी सभा में केस पकड़कर घसीट कर लाया गया और वो भी पांडुओं के सामने, और आपके जीवित रहते हुए मुझे अपमानित किया गया। हाय हाय, पांडव यादव और पांचाल वीरों के दम में दम रहते ही मैं इन पापियों की सभा में दासी की दशा में पहुंचाई गई। किंतु मुझे ऐसी स्थिति में देखकर भी पांडवों को तो न तो क्रोध आया, न इन्होंने कोई चेष्टा ही की, नीचा मुख किए देखते रहे। इसलिए मैं तो यही कहती हूं कि यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन की धनुर्धरता और भीमसेन की बलवत्ता को बार बार धिक्कार है। अतः यदि आप मुझे अपनी कृपा पात्री समझते हैं और वास्तव में मेरे प्रति आपकी दया दृष्टि है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूरा पूरा कोप कीजिए। कृष्ण संधि करने जा रहे हैं, आपको कोप करने के लिए जाना चाहिए। इसके पश्चात द्रौपदी अपने काले काले लंबे केशों को बाएं हाथ में लिए कृष्ण के और नजदीक आई और नेत्रों में जल भरकर उनसे कहने लगी, कमल नयन श्री कृष्ण, शत्रुओं से संधि करने की तो आपने इच्छा प्रकट कर दी, किंतु अपने सारे प्रयत्नों में आप दुशासन के हाथ से खींचे हुए इस केश पाश को भूल गए। यदि भीम और अर्जुन कायर होकर आज संधि के लिए उत्सुक हैं, तो अपने महारथी पुत्रों सहित मेरे वृद्ध पिता कौरवों से संग्राम में जूझेंगे तथा मेरा पुत्र अभिमन्यु पांच महाबली पुत्र के साथ युद्ध करेंगे। यदि मैंने दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूलि दूषित होते न देखा तो मेरी छाती कैसे ठंडी होगी। कृष्ण इस प्रज्वलित अग्नि के समान प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर बहुत प्रतीक्षा कर ली, 13 वर्ष से इस अग्नि को अपने अंदर संजोए हुए हूं। मैं उस दिन को याद रख रख के एक एक दिन निकाला है कि आखिर अंत में इनका नाश होगा। आज भीमसेन के बातों से मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि भीमसेन भी कभी संधि की बात कहेंगे, अर्जुन भी संधि की बात कहने लग गए और आप भी जाने के लिए तैयार हो गए। जन्मेजय इतना कहते कहते विशालाक्षी द्रौपदी का कंठ भर गया, आंखों से आंसू की झड़ी लग गई, होंठ कांपने लगे, सबके सामने फूट फूट कर रोने लगी। सभी पांडव नीचा मुख किए थे। द्रौपदी ने एक एक की ओर देखा, द्रौपदी के सामने कोई देख नहीं सका। विशाल बाहु श्री कृष्ण ने द्रौपदी को धैर्य बंधाते हुए कहा, कृष्णे तुम रो मत, तुम शीघ्र ही कौरवों की स्त्रियों को रोते हुए देखोगी। मैं भविष्य की बात कैसे कहूं, परंतु तुम्हारे कोप से उठने वाले दुख को शांत करने के लिए मेरी बात पर तुम विचार करो। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के स्वजन सुहृद और सेनादि के नष्ट होने पर उनकी स्त्रियां इसी प्रकार रोएंगी। नहीं नहीं, इसी प्रकार नहीं, इससे भयंकर अवस्था में रोओगी। आज तुम्हारे पति तो तुम्हारे सामने है, वो पतिविहीन होकर रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम अर्जुन नकुल सहदेव के सहित मैं भी ऐसा ही काम। आज जिन पर तुम्हारा कोप है, उन शत्रुओं के स्वजन सुहृद और सेनादि की नष्ट हो जाने पर उनकी स्त्रियां भी इसी प्रकार रोएंगी, वे विधवा होकर रोएंगी। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से भीम अर्जुन और नकुल सहदेव के सहित मैं ऐसा ही काम करूंगा। द्रौपदी, यदि काल के वश में पड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो युद्ध में मारे जाकर कुत्ते और गीदड़ों के भोजन बनेंगे। द्रौपदी, तुम ये निश्चय मानो, भले ही हिमालय अपने स्थान से टल जाए, भले ही पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाए, भले ही तारों से भरा हुआ आकाश टूट पड़े, किंतु मेरी बात कभी झूठ नहीं होगी और ये सब धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध भूमि के अंदर मारे जाएंगे। कृष्ण, अब तुम अपने आंसुओं को रोको। मैं सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूं, तुम शीघ्र शत्रुओं के मारे जाने से अपने पतियों को श्री संपन्न होते हुए देखोगी। इससे ज्यादा मैं तुम्हें क्या कह सकता हूं। सारे पांडव हर्षित हो गए। मन ही मन से उन्होंने द्रौपदी की बड़ी प्रशंसा की। द्रौपदी, आखिर तुमने कृष्ण से भविष्य को उगलवा लिया। बड़े प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, इस समय सभी कुरुवंशियों के आप ही सबसे बड़े सुहृद हैं। आप दोनों पक्षों के संबंधी और प्रिय हैं, इसलिए पांडवों के साथ कौरवों का मेल कराकर आपस में दोनों की संधि भी करा सकते हैं। कृष्ण बोले, वहां जाकर मैं ऐसी बात कहूंगा जो धर्म के अनुकूल होगी, परंतु जिसको धर्म अनुकूल नहीं लगता उसका मैं क्या कर सकता हूं। मेरा तो यही काम है कि मैं धर्म को प्रकट करूं। सच पूछा जाए तो अर्जुन, यही तो करने के लिए मैं आया हूं। अच्छा, अब मैं धृतराष्ट्र से मिलने के लिए जाता हूं। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्णचंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का प्रारंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्यकी से कहा, सात्यकी, तुम मेरे रथ में शंख चक्र गदा तरकस शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। सात्यकी ना महाराज, संधि के प्रस्ताव में शास्त्र? सात्यकी, मेरे कहने से तुम रख दो। सात्यकी बड़े खुश हो गए, सब शस्त्र रख दिए। सेवक लोग विदा करने के लिए आगे आए। शैव्य से सुग्रीव पुष्पमेघ और बलाहक, इनके चार नाम थे घोड़ों के। रथ जोता गया, उसकी ध्वजा पर पक्षीराज गरुड़ विराजमान। भगवान श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए और अपने परम आत्मीय सात्यकी को अपने साथ बैठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी गड़गड़ाहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठा और भगवान हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान किए। भगवान के चले जाने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चेकितान, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों सहित राजा विराट और केके राज भी उन्हें पहुंचाने के लिए आगे तक गए। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर कहा, गोविंद, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से पाल पोस कर बड़ा किया, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का प्रयत्न करती रही तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उस मां से मिलना आप न भूले। हमारी उन माताजी का आप कुशल क्षेम पूछ करके आए, उसे हर समय हमारा शोक दुखी करता होगा। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उनके चरणों में प्रणाम बोलना। शत्रुदमन श्री कृष्ण, क्या कभी वो समय भी आएगा जब हम इस दुख से छूटकर अपनी दुखनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे? हमारी माता हमारे साथ राजमहलों में हमारी सेवा स्वीकार करेगी, द्रौपदी उनके चरणों को दबाएगी और वो हमारे सिरों पर अपना कोमल हाथ रखकर आशीर्वाद देंगी। इसके सिवाय राजा धृतराष्ट्र और हमसे बड़े जितने राजा हैं, पितामह भीष्म, गुरुवर द्रोण, आचार्य कृप, वाल्लिक, द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्यान्य भरतवंशियों से हमारा यथायोग्य अभिवादन कहें, एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को हमारी ओर से प्रेम पूर्वक आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, अभी हम सब लोग आपसे मंत्रणा कर रहे थे और आधा राज्य लेने की बात हुई थी, कुछ बात अटपटी लग रही है। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो जाए तब भी कुछ बात बैठती नहीं है। यदि ऐसा न करे तब तो हम चाहते ही हैं कि युद्ध हो। मैं अवश्य उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा, लेकिन यदि दुर्योधन संधि के लिए तैयार हो गया तो फिर भी मुझे खतरा दिखता है। जब हमारे पास अलग राज्य था, हम हमारे इंद्रप्रस्थ में रहते थे, ये हस्तिनापुर रहते थे, उस अवस्था में भी इसने हमारे साथ कितनी कुटिलता की। अब दुर्योधन हमें कैसे छोड़ेगा, क्योंकि उसे पता है कि हमने सोते सांप को, सोते सिंह को छेड़ दिया है। वो हमसे डरेगा और हम उसकी कुटिलता से। ऐसी संधि से क्या लाभ मिलेगा कृष्ण? भीमसेन ने भी कहा, अर्जुन की बात का रहस्य बहुत विलक्षण है कृष्ण। अच्छी बात है, अब आप जब जा ही रहे हैं तो हमारी सब बातों को आप अपने हृदय में रखना। भीमसेन, अर्जुन सब कृष्ण का आलिंगन करके लौट गए और भगवान श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े वे अनेकों महर्षियों को देखा। वे सब ब्रह्म तेज से देदीप्यमान थे। भगवान उन्हें देखते ही रथ से उतर पड़े और उन्होंने उन्हें प्रणाम करके आदर भाव से कहिए, आप सब लोग कुशल पूर्वक है ना, आपका धर्म ठीक ठाक पालित हो रहा है ना, आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं, आपका क्या कार्य है, मेरे लिए आपकी क्या सेवा है, आप सब पृथ्वी पर किस निमित्त से पधारे हैं। तब परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले लगाकर कहा, यदुपति ये सब देवर्षि महर्षि और राजर्षि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय ये हस्तिनापुर में एकत्रित होने वाले क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आप लोगों को देखने के लिए हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। यह सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। कौरवों की राजसभा में जब आपका दिव्य भाषण होगा उसको सुनने की हम सबकी बड़ी इच्छा है। उस सभा के अंदर भीष्म रहेंगे, द्रोणाचार्य रहेंगे, महामति विदुर रहेंगे। उन महापुरुषों के बीच में आपके मुखारविंद से निकलने वाली वाणी कितनी प्रभावित करने वाली होगी। आपके उन दिव्य वचनों को सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवर आप पधारिए, हम सभा में आपके दर्शन करेंगे। अब राजा लोग आगे सभा में मैं बोलूं, बट थारो कहीं लेनो देनो। राजन देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। चलते समय उनको कई प्रकार के शकुन हुए और कई प्रकार के अपशकुन हुए। जन्मेजय ने कहा, ये कैसे शकुन अपशकुन हुए वैशंपायन जी, मैं उनको सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, उस समय बिना ही बादलों की भीषण गर्जना हो रही थी और बिजली की कड़क हुई वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियां और समुद्र ये सब उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गई कि पता ही नहीं लगता है पूरब पश्चिम का क्या दिशा स्थल है। किंतु मार्ग में जहां जहां कृष्ण चलते थे वहां सुखप्रद वायु भी चलती थी और अच्छे शकुन भी होते थे। जहां तहां हजारों हजारों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते थे तथा मधुपर्क और अनेक मांगलिक द्रव्यों से उनका सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेक नगर और राष्ट्रों को लांघते हुए परम रमणीय शालीयवन नामक स्थान में पहुंचे। वहां के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र का जो आतिथ्य किया बड़ा विचित्र था। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब और फैल रही थी वे वृक्षस्थल नाम के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार विश्राम किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान वहां के निवासियों से कहने लगे, आप लोग यहां आए बड़ी कृपा है, हम तो राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं, हम आज रात को यहीं ठहरेंगे, हम लोग ठहरने के लिए ठहर रहे हैं। ग्रामवासी इतने आनंदित हुए, सब प्रकार का प्रबंध करने लगे और सब प्रकार की खान पान की उत्तम सामग्री वहां जुटा दी। उस गांव में जो प्रधान प्रधान ब्राह्मण थे उन्होंने कृष्ण को आशीर्वाद दिया, मांगलिक वचन सुनाए, उनका विधिवत सत्कार किया और इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वादु भोजन कराकर स्वयं भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात में वहां विश्राम किया। हे वैशंपायन जी, वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मे जी, इधर जब दूतों